वैसे रामनवमी के बाद में सीतानवमी, ये सीतानवमी
है, इसके संबंध में बोलूंगा,
उसके संबंध में बोलू
और
व्यकुलता का जो है
इसके संबंध में, तत्व के संबंध में, जीव का और भगवान का आकार जब
हमारी मानसिक बाकी और काय सब प्रकार की चेष्टाएं समझ रही हूँ, बाकी बोलने काय मानसिक ये चिंतित है, ये सारी चेष्टाएं जब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रति प्रदान करने के लिए जब होती है तो उसके प्रति अपने लिए नहीं और के लिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कायिक वाचिक मानसिक जितने भी चेष्टाएं हैं जब की जाती है तो इसके भक्ति का
जितने प्रकार की हमारी अभिलाषाएं हैं उसे भी सेवा छोड़कर इतना तो कृष्ण की सेवा शुरू हो गया और जितनी अभिलाषाएं छोड़ दी जाए और कर्म ज्ञान जो तपस्या बहुत होने का है उसके द्वारा हमें भक्ति नहीं है और किसी घटना विशेष भक्ति में हम जो बचे गुरु या बच उसे अनुरक्त हो और निरंतर हो
गुरु भी भक्त है,
गुरु
गुरु जो भक्त है भक्त ने बताया है उनको गुरु कहा जाता है, इसलिए भक्त का नित्य नहीं करता, भक्त के अनुगत है जो भक्ति है और निरंतर चलेंगे निरंतर, अब एक घंटा ये किया घंटा संसार का घंटा आपने लिया क्या उसके लिए क्या भगवान के लिए आगे निरंतर चलेंगे निरंतर हमारी कई बातें मन का मन से चल रहे हैं अल्लाह अल्लाह का तो सो रहे
ज्ञान कर्म जो के द्वारा खत्म नहीं रह सके तो परेशान होते हैं अनुगत में निरंतर जन्म होती रहे ताकि सब तमाम
कुछ इनको प्राप्त करने के लिए भक्ति एक होने पर भी भक्ति एक होने पर भी जगत प्रेम एक होने पर भी सत्य प्रेम वास्तव प्रेम
मधुर प्रेम वात्सल्य प्रेम ये हो जाता है, पति के साथ में एक प्रकार का प्रेम, सखा के साथ में एक प्रकार का, साधारण लोगों से पशु पक्षियों से एक प्रकार का प्रेम, एक ही प्रेम विभिन्न स्तर में स्वरूप भिन्न नहीं हुआ, प्रेम एक ही है, बाहरी तरफ से वो
आवरण से जो
बाहर से वो दिखता है ऐसा किंतु प्रेम ही है, वो बहुमुखी होता है, प्रेम एक ही प्रेम बहुत प्रकार से
अलग अलग स्तर है, ये समझ लो
अलग अलग प्रकाशित होने का उसका ये
कहीं घनीभूत है कहीं
नहीं घनीभूत है, एक ही ये बिजली लाइट जला रही है कहीं ठंडा कर रही है कभी गर्म कर रही है, एक ही बिजली किंतु कहीं गर्मी कहीं दे रही है कहीं आग जला देती है कहीं तो खूब ठंडा पैदा कर देती है, एक ही बिजली तो कभी प्राणों को हर लेती है कभी प्राणों को संजीवनी दे देती है, उसके उपयोग करने का उसी प्रकार से इस प्रेम का इस भक्ति का जब एक एक तरह से प्रकाशित होती है एक एक व्यक्ति में प्रकाशित होती है तो थोड़ा सा रूपांतर उसमें हो जाता है, एक ही किंतु अंतर हो जाता है, एक पानी में पानी को ले लो एक हरे बोतल में दे दो एक काले बोतल में दे दो एक लाल बोतल में दो तो ऊपर से ऐसा ही दिखेगा, सिर्फ पानी एक पानी में नींबू दे दो एक पानी में नमक दे दो एक पानी में मीठा दे दो तो क्या होगा, अलग अलग ये सब चीजें इसलिए प्रेम एक ही प्रकार का है,
ये रूपांतर वहां उसके माइक स्वभाव का है,
माइक स्वभाव जिनके विभिन्न स्तरों के कारण विभिन्न बहुमुखी होने के कारण ऐसा एक ही प्रकार का केस है, उसने किसी ने लंबी चोटी रख दी किसी ने दूध ली किसी ने ऐसा कर लिया किसी ने शंकर जी वहां पर बना लिए किसी ने यहाँ पर थोड़ा सा इधर में तो रखा, इधर में थोड़ा सा काट करके इधर में बढ़ा दिया, जैसे कैसे एक ही केस की विभिन्न प्रकार से प्रकार अपने वैसे ही भक्ति एक ही प्रकार की कृष्ण के प्रति तन मन वचन से और भावना से
सद्भावना
से इसको भक्ति कहा जाए, जिसमें और कोई अभिलाषा न हो, ज्ञान कर्म योग के द्वारा वो आच्छादित न हो किंतु अनभिलाषा भी नहीं। ये तो हुआ सुधा अंतिम भक्ति, जिसमें जब हम इसका साधन करते हैं तो कोई एक रूप से करता है, कोई दूसरे रूप से करता है, कोई तीसरे रूप से करता है। जब भगवान का नाम रूप गुण मुख से उच्चारण करता है, पहले सुनता है, तो इसको श्रवण भक्ति कहते हैं। इसी का जब कीर्तन करता है तो इसको कीर्तन भक्ति कहते हैं। जब इसी को स्मरण करता है तो स्मरण भक्ति कहते हैं। जब कृष्ण के लिए जहाँ पर उनका जन्म इत्यादि हुआ वहाँ पर जाते हैं तो इसको पद सेवन कहते हैं। उनको दास भाव से जब कृष्ण को इसी प्रकार से सब सेवा करता है दास भक्ति कहते हैं। जब मुख से भगवान की अनंत प्रशंसात्मक बातों को स्तव और स्तुति से उनको आकृष्ट करते हैं तब उसको वंदना करते हैं, स्तव स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। और प्रभु के साथ में सख्त भाव से रख करके उनकी जब सेवा करते हैं सख्त करते हैं। और अंत में जब सब कुछ निवेदन करते हैं उनके चरणों में अपने को तो आप निवेदन करते हैं स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम ये नौता। ये कुछ लोग नौता भक्ति को दूसरे रूप में लेते हैं और कोई इत्यादि किन्तु हम लोग उसको तुलसीदास जी ने थोड़ा सा रूपांतर के साथ में नौता भक्ति को लिया है। इसके अधिकांश भावों को तो लिया है किन्तु वो एक चीज को उन्होंने उलट दिया, किन्तु हम लोग भागवत को बनाता इसलिए भागवत में ये नौ इसी को चैतन्य महाप्रभु और उनको हम लोग सब इसको ये नौधा नौधा भक्ति माने एक ही भक्ति नौ प्रकार से जब की जाती है तो इसको नौधा जी महाराज नैमित्तिक भक्ति नैमित्तिक नवधनेश्वर श्रवणम कीर्तन नैमित्तिक भक्ति भी नित्य भक्ति में सनातन और नित्य भक्ति है उसमें भगवान को नित्य माना जाता है और जो भक्ति करता है उसको भी नित्य माना जाता है और जो भक्ति करता है वो भी नित्य माना जाता है तब ये नित्य भक्ति है। और जिसमें भगवान को तो नित्य माना गया और जीव को भी नित्य माना गया किंतु अपने मनमानी भावों से जब उनकी साधना की जाती है तब ये नित्य भक्ति से नहीं। और अनित्य भक्ति एक अनित्य भाव है अनित्य धर्म। जब भगवान की नित्यता नहीं है जीवों की नित्यता नहीं भक्ति की नित्यता नहीं ऐसे ही कुछ करते हैं तब वो अनित्य जैन धर्म में इसको बहुत साफ सुथरे
लेकिन इसमें जैन धर्म और साधन भक्ति को इसमें नहीं इसमें दो नहीं दो बातें हैं उसमें जैन धर्म चाहिए किसी संदर्भ में जो पहला आपने बताया कि भगवान को भी नित्य मानना है जीव को भी अपने को नित्य मानना है और सबसे नित्य संबंध के लिए जो क्रिया की जा रही है लेकिन उसके लिए साधन में अगर भौतिक मानता है लेकिन उसको नित्य ही माना जाएगा जैसे अर्चन कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं मुख से बोल रहे हैं जरूरत का विचार भी
तुमको
जैवदान मिला है कि नहीं पुस्तक के
मेरे पास एक पुस्तक है
क्या नाम
वो तो मैं मैंने तो वो पढ़ लिया गॉडियर जी की
नहीं तुम विचार की पुस्तक पढ़ो जिसमें ये सब सिद्धांत है वो जैव धर्म ये हमारे किसके पास में है इनके भैया को दिया हुआ उनको आपके भैया किया है ना मैं इसके लिए अलग किया जब वो अपना पुस्तक है ये वो पढ़ते हैं आपके भैया है ना उनको जागरण दिया था मथुरा में वो जब मैं वो हो गई किया तुमको दिया था
तो मैंने तो मन से गौरी पूरा पढ़ लिया
तो उसमें सिद्धांत की नहीं तो भगवान से प्रार्थना की
उसमें ना अलग अलग से ललिता आश्रम है अलग अलग रूप से भगवान की वो मतलब अर्चन में किस तरीके से मतलब हर एक पॉइंट को क्लियर मतलब ललिता राधा जी
की तुमको देंगे धर्म
गीति गुच्छ है गीति का तेरी गुरु वंदना शुरू में दी हुई है
उसे तुम्हारा काम अभी प्रार्थना के लिए भजन के लिए और इस सिद्धांत के जानने के लिए जरूर
जाऊंगा
उसको कुछ दिया था पुस्तकों
अभी अभी महाराज 15 तारीख को जब आएंगे ना तो
ठीक नहीं तो वो हम लोग आएंगे ना 15 को आएंगे 15 को उसमें पुस्तकें सब ले आएंगे और भी तो उसमें कभी वहाँ पर चल जाना
है
तो वहाँ से ले लेंगे बस वहाँ पर और स्टाफ पढ़ देंगे
हमारे पास
जीरो नॉलेज कृष्ण के बारे में जीरो
ठीक अब जीरो नहीं रहेगा अब उसमें
मेरे गौरी की भी कुछ मेरे पास एक पुस्तक थी वो मैंने पूरी की अब एक बार पढ़ने में मेरे पास इतना अच्छी लगी अगर तो दूसरी बार पढ़ूंगी तीन बार उस पुस्तक को पढ़ लूंगी ना तो पूरा ब्रेन वॉश हो जाएगा
नहीं
तीन चार बार उसका
ऐसा नहीं होगा
बहुत
गहरी है बहुत गहरी नदी है एक बार बांध से उसको मापो फिर दूसरे बार भी डालो तीसरे भी डालो अच्छा है वो डूब जाएगी नहीं आएगी दो बार में भी तीन बार फिर जब हम थोड़ा सा समझाएंगे तो यार हमने तो कुछ समझा ही नहीं था
लेकिन इतना है कि मैंने चौथी बार पढ़ लू तीसरी चौथी बार पढ़ लूंगी तो बस फिर अपना
वो तो बात थी
क्लियर होती थी
अब जब हम उसको समझाएंगे तो तुम्हारा समझ पूरा होगा
पहली बार खुद पढ़ रहे हो तो प्लीज
थोड़ा कहिए आपका क्या प्रश्न
वो मोक्ष और मुक्ति की बात
वो उसकी लड़की आई है ना कुछ खाना चाहती है तो कुछ फॉलो और इसको भी दे दो यू कैन गो एंड टेक सम फोर्स यू कैन यू शुड गो एंड गिव टू योर लिटिल गर्ल
लॉर्ड कृष्ण भगवान कृष्ण की भक्ति पर मेरे को ज्यादा मानते
हो अमेरिका
कौन
कौन
मच्छा की तो
वो आपकी लड़की की शादी करने आई थी
आम नायो
ये संस्कृत वो गुरु परंपरा की धारा को आम नाय कहते हैं ब्रह्मा से लेकर के अब तक हम लोगों की जो गुरु परंपरा की धारा चल रही है इसको आम नाय आप उसमें अमनाय वाक्य कहते हैं जिसको गुरु परंपरा ने स्वीकार किया है जिन शास्त्रों को जिन वाणियों को जिन शास्त्र के वाक्यों को उसको हम लोग को गुरु परंपरा में ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ये चारों वेदों को और 108 उपनिषदों को 18 पुराणों को महाभारत को रामायण को और उनके अनुगत जितने शास्त्र हैं आज तक के जैसे चैतन्य चैतन्य इत्यादि रूप गोस्वामी के गीता भागवत महाभारत का एक अंश श्रीमद् भागवत ये सब अमनाय वाक्य हैं इन अमनाय वाक्यों में भी सबसे श्रीमद् भागवत को माना जाता है अखिल प्रमाणों में श्रेष्ठ और निर्मल प्रमाण श्रीमद् भागवत इसलिए हम लोगों की गुरु परंपरा ने श्रीमद् भागवत को अमल और प्रामाणिक माना है किसी विषय में भी कोई संदेह होगा तो वेदों की बात मानेंगे कब मानेंगे यदि भागवत के अनुसार होगा तो और नहीं तो नहीं मानेंगे ये उपनिषदों की बातें यदि भागवत के अनुकूल हैं, सब में ये देखेंगे भागवत के अनुकूल होना चाहिए। और जहां पर सब आपस में विवादमान हैं, मैंने लड़ी झगड़ा कर रहे हैं, वहां पर श्रीमद् भागवत जो कहते हैं। और दूसरी बात है, भागवत के अनुकूल यदि उनमें है तो वो सब बातें
स्वतः सिद्ध है। हमने वक्त स्वतः सिद्ध हो,
स्वतः सिद्ध मैंने स्वयं भगवान ने कहा है, वेद उपनिषद सब उनसे निकले हैं, किसी मनुष्य का बनाया हुआ है, ये सर्वज्ञ भगवान ने बनाया है, उन्हीं के मुख से या किसी प्रकार से श्वास से ये निकले, इसलिए ये नित्य है, अनंत है और अनादि है। इसको कोई पौरुष पुरुष ने नहीं बनाया, अपौरुष ये अपौरुष है, अतः भगवान इसकी कोई भी बात युक्ति के द्वारा किसी भी विषय के द्वारा खंडन नहीं करेगा। किंतु कुछ मूर्ख मनुष्य हैं जो कि कभी वेद तो पढ़े नहीं और गुरु से पढ़े नहीं, उन चीजों को समझ नहीं पाते। जैसे सच बोलो है ना, अब सच बोलने में वेदों ने कहा कि सच बोलो, किंतु देख सुन करके बोलो। एक गाय जा रही है कहीं और उसको एक कसाई ने सोचा जी से पकड़ करके इसको काटेंगे, इसे पकड़ने दौड़ा और गाय भागी, और एक व्यक्ति ने देखा, यदि कसाई ने पूछा जी इधर गाय गई थी आपने देखा, यदि कहता है कि हाँ मैंने देखा तो ये झूठ है, देखा तो सत्य ये जा रही है, किंतु यदि कहता है जिसे गाय गई और उसको पकड़कर उसने काट दिया तो ये मिथ्या, उसका पाप लगेगा। यदि वो कहेगा जो मैंने, अरे देखा उधर में गई, उल्टा दिशा में बदला, उधर में गया इधर गाय बच गई। किसी को प्राण बचाने के लिए विवाह में एक लड़की में कुछ त्रुटि है, और विवाह वाले आए उन्होंने कुछ बात सब ही कर दी, तरह से समय समय पर किसी भी प्राणी की रक्षा करने के लिए झूठ जैसा कुछ समझ में आता है। जैसे विश्व को रक्षा करने के लिए अर्थात उसे कृष्ण ने कहा अश्वत्थामा मारा गया ये कहो, ये परम सत्य, किंतु जो युधिष्ठिर महाराज ने स्वीकार किया उनके असत्य भाषण का दोष। और वही कृष्ण ने कहा कि हमको गोकुल में पहुंचाओ और कहा देना जी हमको लड़की हुई है लड़का नहीं। वसुदेव जी परम सत्यवादी थे, उन्होंने कृष्ण बात को की बात को मान लिया और कहा जी हमको लड़की हुई है लड़का नहीं, बात लड़का। तो सत्य का और असत्य का निर्णय करना ये साधारण बुद्धि का ये काम है। कृष्ण जो कुछ कहते हैं वही परम सत्य है, क्योंकि वो सत्य है, त्रिशक्त है, सत्य की योनि है, उन्हीं से सत्य निकला है, सत्य की पुष्टि करते हैं, सत्य की रक्षा करते हैं। इसलिए कृष्ण स्वयं सत्य है, उनकी वाणी सत्य है, उनकी क्रियाएं सत्य है। इसलिए हम नए वाक्य जो है ये हमारे लिए
श्यामा तबलम प्रपद्ये तबला श्यामा, तो बीरबल के जन महाराज एक श्यामा तबलम प्रपद्ये तबला श्यामा प्रपद्ये,
इसका मतलब यह है कि पहले तो ये हुआ जैसे कृष्ण ही परम तत्व है, शास्त्र प्रमाण हुए। दूसरा हुआ हरि ही परम तत्व, हरि माने कृष्ण, ये परम तत्व, इसलिए वेद से उपनिषद से सब से लिया है। क्यों कहते हैं कि वेद में कहां कृष्ण का नाम है, हरि नाम है, तब कहते हैं सबल, सबल माने क्या, बल के साथ, बल के साथ मैंने कौन
श्याम,
समझिए बल दिखाई नहीं पड़ता किंतु जिसमें वो रहता है वो उसको हम देखते हैं। जैसे भीम में जो बल है वो बल नहीं दिखाई देता, उसका अनुमान कब करते हैं, जब किसी को पछाड़ दिया, कोई पेड़ को उखाड़ लिया तब कहते हैं ये बल, यदि पेड़ को नहीं उखाड़ सकते तो देखते हैं कि ये बलवान नहीं, बल मोटा ताजा है, बल नहीं, इसलिए बल के साथ मिला है। कृष्ण का बल कौन है? राधा जी। राधा जी के साथ में जब होगा तो कहाँ से? हरे कृष्णा। व्यवहारिक मैंने दो प्रकार के इसके अर्थ, शंकराचार्य ने व्यवहारिक जिस अर्थ में लिया उसका अर्थ है जो कुछ पारमार्थिक क्रियाएं हैं कुछ व्यवहारिक, हम लोग उसको नहीं मानते। ब्रह्म व्यवहारिक रूप उसका रूप है, पारमार्थिक रूप में उसका कोई रूप नहीं। व्यवहारिक रूप में ये सब देखा जाता है किंतु पारमार्थिक रूप में बस एक ही परम सत्य है, ब्रह्म सत्य। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बनना पड़ा, जगत मिथ्या है और जीव ये नित्य है। हम लोग का व्यवहारिक ये है, जब हम भक्ति का साधन करते हैं तो उसको अपने व्यवहार में लाते हैं। ये जो व्यवहार है इसका तटस्थ लक्षण भावना के द्वारा भीतर अंतर से जो भगवान के प्रति प्रेम होता है ये तो है परमात्मिक व्यवहार, परमात्मिक शब्द। ये भावना के ऊपर भी सब कुछ निर्भर है, भगवान के प्रति प्रेम ये दिखाई नहीं देता है। किंतु जिस व्यक्ति से जिस व्यक्ति को प्रेम होता है तो प्रेम होने पर उसको कुछ खिलाया पिलाया, प्रेम से जमिला आंखों से आंसू की धारा देती है, ये सब इसके व्यवहारिक रूप में दिखता है। जैसे भगवान का भजन तो आत्मा से होगा किंतु प्रारंभिक रूप में इसको पाने के लिए हम मुख से जो शास्त्रों में दिए गए हैं, गुरु के मुख से हमने जो सुना है उसका जब कीर्तन करते हैं तो ये व्यवहारिक रूप में वंदना किया जाए, ये व्यवहारिक। जब हम भगवान के विषय में कुछ सुनते हैं कान से और कोई ये गुरु बोलता है या कोई भक्त बोलता है तो सुनने में ये व्यवहारिक, भगवान की कथाओं को सुनना ये व्यवहारिक। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, अर्चन भी व्यवहार, पाद सेवनम हम परिक्रमा कर रहे हैं ये भी व्यवहारिक। इसलिए अपने इंद्रियों के द्वारा जो कुछ किया जाता है भगवान की भक्ति के लिए प्रथम उसको व्यवहार, इसलिए व्यवहार में प्रतिष्ठित होना चाहिए खुद। अब ये इसका फल क्या होगा, क्रमशः भगवान में ममता बढ़ती जाएगी इन चीजों के द्वारा, वो ममता दिखेगी नहीं। उससे होगा क्या, ये जो व्यवहारिक चीजें थी और भी प्रगाढ़ होती जाएगी और उधर इन भावना को बढ़ाती जाएगी, भगवान में अत्यंत ममता और आसक्ति।
कृष्ण है करु बारम्बार प्रणाम सदा, मैं वंदन हे कृष्ण, अब अर्पण करूँ मंदिर में करो,
हमको परम ब्रह्म से भी जरूरत, पार ब्रह्म से जरूरत।
किसी
किताब और किताब को अध्याय बंद करके सूत्रा लगा दो, अब तुमको जो मैं पुस्तक और भाव देता हूँ अपने हृदय में उसको उठा दो, नहीं तो तुम्हारी जो भक्ति की दबा चली जाएगी, सरक जाएगी। अब जो मैं पढ़ाता हूँ जो मैं तुमको देता हूँ एकांत चित्त से हृदय में धारण करो, एकाग्र से तो भक्ति की तरफ में आगे बढ़ेगी और उन सब चीजों को याद रखेगी पता पड़ो तुम्हारे लिए जो उनने पढ़ा जो कुछ वो अनुकूल है तो ग्रहण करो, प्रतिकूल को छोड़ते जाओ। अनुकूल जो उसमें है भगवान का भजन करना चाहिए ये ग्रहण कर, भगवान का चिंतन ये ग्रहण कर। किसका लिखा हुआ है यीशु ख्रिस्त का
पता नहीं
पुराण, अब पता हुआ व्यास जी का पढ़ो, सुखदेव गोस्वामी जी का पढ़ो, नारद जी का पढ़ो, विशेष और जो आचार्य भक्ति के हुए हैं मध्वाचार्य हुए हैं, रामानुजाचार्य हुए हैं, निम्बार्काचार्य हुए हैं, विष्णु स्वामी हुए, इनकी बात सुनो और इन सब में भी अधिकतर चैतन्य महाप्रभु की बात सुनू। महाप्रभु के बात समझने के लिए अब रूप गोस्वामी भक्ति के आचार्य हैं, उन्होंने भक्ति गोस्वामी श्री को लिखी है,
उज्ज्वल दिन में किरण से लिखे हैं।
और गुरु के लिए भी परम तपस्वी परम संयमी रतन क्रय के पालन अर्चना के दृष्टि में भी
कुछ हद ठीक है। आपको क्या बतला रहा हूँ, त्यौहारी त्यौहारी
कल के एक जन खुद पुरानो भक्त तो किसी जैसे महात्मा को देख के या किसी ऐसे भावपूर्ण चीज को देख के भक्ति में उत्कंठा होती, परंतु फिर कोई और भौतिक प्रसंग आ जाता है या सांसारिक कोई हुआ तो फिर वो उत्कंठा दब जाती है। तो ये सब किस तरह से वो उत्कंठा मेंटेन किया जा सकता है जिससे कि हमारी भावना और बढ़ती रहे भगवान की।
चित्त वृत्ति का वैशिष्ट एक चीज है और चित्त वृत्ति का बदलना एक चीज है। हम लोग की चित्त वृत्ति कभी नहीं बदल सकती, किंतु इसका वैशिष्ट होगा कभी कीर्तन कर रहे हैं, कभी श्रवण कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कुछ दूसरे भावना से उत्प्रोत होकर के भगवान से चल रहे हैं। चित्त वृत्ति भगवान में ही लगी है जिस किसी भी विषय से, ये तो वैशिष्ट है। और बदलने का उसको कहते हैं जब अपने रूप से अपने मार्ग से कुछ दूसरा मार्ग पर चलने लगती है तो इसको बदलना है,
मतलब लक्ष्य बदल,
लक्ष्य बदल गया। यदि लक्ष्य बदल नहीं करते, यदि हम इधर उधर से कुछ दूसरे रूप में उसको ले रहे हैं, इसको वैशिष्ट कहेंगे। और जब हम अपने लक्ष्य से कुछ अलग होकर के जब अलग चलने लगते हैं तो ये बदलना है। अभी हमारी चित्त वृत्ति स्थिर भाव में, अभी स्थाई भाव में नहीं आई। जब तक स्थाई भाव में नहीं आई, निष्ठा नहीं हुई, स्थाई भाव तक दूर रहे, अभी निष्ठा नहीं हुई तब तक बदल सकते। किसी एक चीज के वैशिष्ट को दे करके सौंदर्य माधुर्य या युक्तिपूर्ण किसी की बात सुन करके वो अपनी दिशा बदल सकते, किंतु जब निष्ठा हो जाएगी तब नहीं बदलेगी। इसलिए हमको जरूरत है अपनी भक्ति की निष्ठा में लाना। अनिश्चित होने में कभी लप लप आएगी, जैसे दीप है ना, हवा के झोंकों में इधर उधर हो जाता है, कभी बुझ भी जाता है, ऐसे कभी हो जाएगा। किंतु जब निष्ठा हो जाएगी निरंतर श्रवण करने से, श्रवण दो प्रकार का, एक साक्षात रूप में किसी वैष्णव के मुख से सुनना और एक होता है वैष्णव के रूप में गुरुप गोस्वामी इत्यादि के भागवत इत्यादि ग्रंथ है, उन ग्रंथों का अवलोकन और अनुशीलन करने से कभी उसमें भी टिकाऊ के साथ में यदि हो तो उसको अच्छी तरह से सुनना। ये श्रवण दो प्रकार, इसलिए वैष्णव भी दो प्रकार, एक भक्त भागवत और एक ग्रंथ भागवत। भक्त भागवत के माध्यम से ग्रंथ भागवत को समझने की चेष्टा की। मैंने एक लाइन आपको दे दी, एक दिशा दे दी सोचने की और कहा कि अब चैतन्य चरितामृत को पढ़ो, आप अच्छी तरह से समझो। अब बिना निर्देश के, बिना आदेश के और आप उसको समझने की चेष्टा करेंगे, समझ में नहीं आएगा। इसके बाद में फिर रुकावट आएगी, फिर मैंने निर्देश दे दिया, आप कुछ दूर तक और बढ़ गए। रोज जरूर क्लासें होती है, किस लिए? घर में
विचारों को दिशा देने के लिए
रोज रोज पढ़ाया जाता है, एक दिन भी बंद, हाँ कभी दो महीने के लिए बंद हो जाता है, कभी जाड़ों में कभी गर्मी में, जबकि बुद्धि का उस समय में देखता है कि कुछ का बड़ी है, खूब गर्मी पड़ने या कुछ बीच बीच में छुट्टियां दे देते हैं, किंतु उसको छोड़ा नहीं जाता जब तक कि वो वहां पर उसमें रुचि उत्पन्न न हो जाए, एक वहां पर स्टैंडर्ड में न पहुंच जाए, तब तक इसको मत।
इस टाइम में तो कह सकते हैं किसी को इसी तरह रसायन शास्त्र में रुचि है तो किसी को हिंदी में रुचि है तो किसी को संस्कृत में रुचि है,
वैसे ही
सब्जेक्ट तो एक ही रहेगा। आपका सब्जेक्ट है कृष्ण,
हमारा जो चिद वृत्ति है ना, चित्त वृत्ति तो नहीं है, जो वृत्ति बहुत बता रहे हैं, चिद वृत्ति है ना,
ये चित्त वृत्ति उधर में ले जाएगी,
चित्त वृत्ति
मन की वृत्ति है,
अब यही जब निर्मल होती जाएगी तो वो चित्त जो भक्ति है वो सिद्ध है, वो ठीक है, वो अपराधिक है। उधर में ये बात
महाराज, इसलिए आपने प्रश्न मुझसे लिया ना, जैसे आप हमको प्रश्न का ज्ञान नहीं है, धीरे धीरे आप फरमाएंगे तो हमारे रुचि अपराध इंटरनली बढ़ता चली जाएगी,
तो ये श्रवण से होगा।
जैसे महाप्रभु ने जो भागवत का बोला, उन्होंने कहा कि श्रीधरी टीका को उन्होंने वो ज्यादा उन्होंने वो किया, तो श्रीधरी एक
उसको
विचारधारा हो गया।
एक सुनिए, व्यास जी ने भागवत को कैसे लिखा है, नारद जी की कृपा से उन्होंने इंस्पिरेशन उनका कर, स्पेशल के द्वारा भक्ति हुई और भक्ति से सारे तत्वों को उन्होंने अपने अंदर में देखा, आलोक की भाव और उसी को जीव कल्याण के लिए प्रकाश किया। इसलिए व्यास जी ने भागवत बनाई नहीं बल्कि देख करके उसको अनुभव करके उस चीज को लिखा, उसको चीज को प्रकाश किया। भागवत पहले से ही भगवान की लीला थी। अब पीछे से जो भागवत पढ़ते हैं, व्यास जी की भावना उनके अंदर में नहीं है तो वो भागवत को नहीं समझेंगे। अब व्यास जी की भावना को देगा कौन, जो कि उनसे पाया है, सुखदेव गोस्वामी से, सुत गोस्वामी को मिला, इसी तरह से परंपरा तक आज तक मिली। इसलिए उन चीजों को हम अनुसंधान करके उनके माध्यम से, अब लीजिए शिखर स्वामी को, शिखर स्वामी और व्यास जी का एक भाव है कि नहीं, भक्त है वो, किंतु मायावादियों को भक्ति में लाने के लिए उन्होंने वर्षा मिश्र न्याय कुछ टीकाएं की, एक्सप्लेनेशन दिया। वर्षा मिश्र माने क्या है, जिस प्रकार से एक बांस के वो बंसी खिलाती है मछली पकड़ने के लिए, उसके अंत में डोरी बांध देते हैं और डोरी 10 हाथ की रख देते हैं, 20 हाथ की रख देते हैं और उसके अंदर में लोहे का एक कांटा लगा दिया, उसमें केचुआ या मांस का टुकड़ा या कोई आटे का कुछ कोई चीज उसमें लगा दी, झट फेंका, झट उस निकल गई, निकलने के बाद में फिर। इसलिए सिद्धार्थ स्वामी ने उसमें अद्वैतवादियों को भक्ति के तरफ में लाने के लिए मायावाद का पूत देते हुए भक्ति का विचार दिखलाया है। महाप्रभु जी ने देखा, इसके पहले और कोई टीका नहीं हुआ, किंतु महाप्रभु जी का विचार शुद्ध भक्ति का था, प्रेम का था। उसमें उन्होंने कुछ अंशों में उन्होंने पूरा किया है सिद्धार्थ जी, और उद्देश्य भी वही था, किंतु बाहर रूप से जो वो जो दिया है ना, मांस का टुकड़ा या ये,
वो भ्रमित कर सकता है,
वो भ्रमित कर सकता है साधारण लोग, और भ्रमित किया भी है। इसीलिए अद्वैतवादी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत ये अद्वैत परक अर्थात ब्रह्म और जीव का मिलन ही इसका एक में मिल जाएगा।
बहुत भागवत के बाद रस का सिद्ध हुआ,
अभी सुनो,
रस सिद्ध हुए,
सुनो इसके बाद में। किंतु बात ऐसी है, हमारे सनातन गोस्वामी जी और जीव गोस्वामी ने महाप्रभु का विचार लेकर शिखर स्वामी को सम्मान देते हुए उन अंशों की व्याख्या की और व्याख्या करके उसी भक्ति में उसको ले आए। यह विचार कैसे ब्रह्म और शिववाद त्रिवाद, ये उनका उद्देश्य नहीं था, क्योंकि इस श्लोक की व्याख्या में उन्होंने ऐसा किया है, यदि इसको ले लिया जाए तो उनके विचारों में भी मतभेद हो जाएगा, इसलिए वो जो पहले का जो व्याख्या है इसी श्लोक की व्याख्या में इसको भी लिया जाए, इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे करके। शिखर स्वामी के बहुत से ऐसे विचार हैं जो भक्ति के लिए कुछ बाधक हो सकते हैं ऊपर से, किंतु भीतर से उनका उद्देश्य नहीं है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है कुछ अंश, इसलिए उन्होंने कहीं कहीं लिख दिया है एक्सप्लेनेशन। एक श्लोक है, जो कुछ इस जगत में देखते हो वो भगवान जी, ये बात ठीक है, जो कुछ है वो भगवान है, यही भगवान है, हम लोग भगवान नहीं, भगवान के अंश। इस चीज का एक्सप्लेनेशन हमारे गुस्सा में, हमारे बल्लभाचार्य ने कुछ प्रतिवाद किया, उसमें ये सब अंश है, इसलिए शुद्ध नहीं है। हम सुबोधनी नाम की एक टीका, महाप्रभु जी ने कहा कि स्वामी के जो नाम आने से वेश्या कही जाती है, सिद्धार्थ स्वामी की जो नहीं मानता है भागवत के विषय में, परमात्मा के विषय में, उसे वेश्या कर। किंतु जीव गोस्वामी ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने और सनातन गोस्वामी जो टीका किया है, उनका प्रतिवाद किया है सिद्धार्थ स्वामी, किंतु सम्मान दे करके इसका अर्थ ऐसा नहीं, ऐसा होगा इस प्रकार से धीरे 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 सुधर स्वामी को महाप्रभु जी ने हमारे आचार्य ने दिया है। किंतु यदि विशेष रूप से देखेंगे तब तो भक्ति पर, और नहीं तो कहीं कहीं पर मिसगाइड होने का चांस।
तो गौड़ीय संप्रदाय के लिए कौन सा टीका सबसे,
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और
सनातन बृहद भागवतम,
बृहद भगवतामृत नहीं, बृहद वैष्णव दोष, जीव का लघु वैष्णव दोष, और इन दोनों को अपने में रिकनसाइल करके कृष्णा चक्रवर्ती की परम रसिक सरल सहज सुबोध भाषा में आए, इसलिए हम लोग सभी लोग उसी बात ध्यान। उसमें सनातन गोस्वामी का आ जाता है, जीव गोस्वामी का और टीका,
पूरी भागवत की तो लोगों के लिए उपलब्धि नहीं है, मतलब इसकी टीका है संस्कृत में, संस्कृत में या बंगला में,
संस्कृत में,
संस्कृत संस्कृत है,
तब स्मृति थोड़ी सी प्रशंसित का ज्ञान हो तो उपको हो सकता है, किंतु लिपि भी तो हिंदी होना चाहिए। मैं सोचता तो हूँ किंतु हमारे लिए काम बहुत अथाह है,
लिपि समझ।
अरे तुम लोधी अभी चली गई थी, लोधी, लोधी नगर तो कहा थी, सो रही थी, अरे तो क्या कर, ये लोग बाहर के लोग आकर के लूट करके ले करके चले गए और तुम आराम के साथ ले गए,
चौकीदारी करने के बारे में
इसको चिंता नहीं है, हमारे घर की बात
है, भाग्य नहीं है,
भाग्य
कोई छोटे श्रेणी के लोग होते हैं,
हम लोग भी उनका सम्मान देते हैं, किंतु होने पर भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को टीका कर उसी को देते, महाप्रभु के भावों को रसिक सर्व से सनातन गोस्वामी का बहुत विवेकपूर्ण, तथ्यपूर्ण और दार्शनिक उनकी टीका है, बहुत ही सुंदर उन्हीं का दूषण हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती जी,
क्या नाम है उनकी टीका, कृष्ण
श्रीमद भागवत की जो टीकाएं हैं, वैष्णव बृहद तोषणी और लघु, उनका भी सार है, भागवत का तो सार है,
उनकी टीका
हमारे सिद्ध रूपा जी गोड़े भाष्य
टीका नहीं है, वो तो उसके ऊपर में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन व्याख्या, विशेष शब्द विशेष सिद्धांत श्लोक भी सुना
महाराज जी, जो इस्कॉन से जो प्रभुपाद जी ने जो भागवत के ऊपर जो निकाला है, क्या वो विश्वनाथ चक्रवर्ती के उससे
कहीं कहीं पर लिया है, कुछ संपूर्ण उन्होंने कुछ उन लोगों के लिए
वेस्टर्न वर्ल्ड को देने के लिए
उसमें कुछ जो वो समझ सकते हैं उतना ही तक दिया है, वो सब ले लिया, वो लोग उसका उसका बुरा असर उन पर पड़ेगा, इसलिए वो सब चीजें कुछ कुछ एक दिग्दर्शन के रूप में किया सबको, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण से कुछ लिया है, पूरे रूप में नहीं दिया, क्योंकि वो समझेंगे नहीं, उस अधिकार में नहीं, शायद अब होते तो शायद देते,
वो आप रिकमेंड करते हैं
साधारण लोगों, किंतु उसमें बहुत सी गड़बड़ियां थी, साधारण लोगों ने लिखने जाकर के उन्होंने कर दिया कहीं ये यशोदा के दत्तक पुत्र है, हम लोग उसको ग्रहण नहीं करते, बहुत सावधानी के साथ में ये सब चीजों का की व्याख्या होनी चाहिए, इसीलिए इसको आज कुछ पथ भ्रष्ट हो रहा है, मार्ग से भ्रष्ट चल रहा है। उन्होंने किस लिए किसी बात को लिखा कि आगे बढ़ें ये लोग तब ये समझेंगे, अनाधिकार में न दिया जाए। उन्होंने मान लिया जैसे अब इति श्री बस समाप्त, इसके आगे कुछ नहीं है, इसलिए पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। ऋषि मार्गदर्शन के लिए हमको उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे, उन्होंने को भी बतलाया था तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार करके चल
वकील के प्रति ऋषि के
कहते यदि आगे कोई बढ़ता है तो अपने स्कूल से निकाल देते, यदि प्रभुपाद के बातों को ही वो मान करके चलता है आगे तो बस कहते कि नहीं ये प्रभुपाद का विरोधी बात। मैंने कहा इस विषय के लिए भक्तिर स्वामी सिंधु में देखो, किंतु भक्तिर स्वामी सिंधु पड़े रहते इसको हम कहेंगे बाहर करो, बाहर करो इसको, है कि नहीं बात। प्रभुपाद ने नहीं कहा इसके लिए वो ग्रंथ देखो, उज्जवलिन मणि देखो, भक्तिर स्वामी सिंधु देखो, मूल ग्रंथ को देखो,
ये बातें अधिक कही,
यही बात अधिक कही। और इसके लिए अनाधिकारियों के लिए जिन पर अधिकार हो जाएगा तो वो पढ़े, ये लोग कहते कि नहीं बस वहीं तक रख करके काट, तुम वहां पर भी नहीं स्कूल गई थी, उन लोगों के लिए कुछ बातें हैं, जब कनिष्ठ अधिकार में आ गए उनके लिए कुछ अलग बात है। यहां तक कि कनिष्ठों के द्वारा अर्चन को भी कहा गया है ये कनिष्ठ अधिकार, इसके बाद में मध्यम अधिकार में जब गए कौन वैष्णव है कौन वैष्णव नहीं है, कौन सा भक्ति है कौन बात भक्ति नहीं है, इसका विचार जब आने लग गया और योग्यता दे करके वैष्णव को उसको उसी कम रूप में सम्मान दिया गया, उसके भी अलग चीज है। इसके बाद में श्रवण कीर्तन में प्रतिष्ठित जब हो गया, भजनीय से भजन से भजनीय में जब चली गई उसकी बुद्धि, तो राधा कृष्ण में तन्मय होकर ये गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। यदि वो भाव अवस्था में प्रवेश कर गया और इन चीजों को सबको छोड़ दिया तो बहुत उन्नत गुरु की सब उन्नत सेवा है, गुरु जी का रोम रोम खिल जाएगा जो आज हमारी ऐसी सेवा है। और जिस समय वो सिद्धि होकर के प्रेम में पहुंच जाएगा उस समय गुरु जी के आंखों से आंसू की धारा बहेगी,
ये दर्शन
ये सब का गुरु ने कहा जी उसको मारो, अच्छी बात बस उठाई कुल्हाड़ी बंदूक उठाया ना, ये भी तो सेवा है, ये सेवा है आजकल इसी को दिया जाए। ऐसा न तो गुरु गुरु है न चेला चीज, ये दोनों जहन्नम है।